शरीर के रहते हुए काम नाश होता है और काम नाश होने से ही ये हमारी जो मांग है वो पूरी होती है। अब इस संबंध में किसी को कोई विकल्प होता हो, संबंध में ना आया हो, कठिन बाल होता हो तो प्रश्न करो। तो हमारे सामने है काम का नाश करना, और काम का अर्थ क्या है इस पर विचार करें। कर्तव्य को काम नहीं कहते, काम का अर्थ है वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, अवस्थाओं का आकर्षण। उसका आकर्षण जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है उसको काम कहते हैं। काम माने उसका आकर्षण जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। स्वतंत्र स्थिति किसकी नहीं है भैया, विचार करके देखो। न शरीर की स्वतंत्र स्थिति है, न संसार की स्वतंत्र स्थिति है। ये बात समझ में आती है?
आती
है। अगर ये बात समझ में आती है तो स्वतंत्र स्थिति केवल एकमात्र जिसकी है उसी को भक्तों ने भगवान कहा है, उसी को जिज्ञासुओं ने तत्वज्ञान कहा है, उसी को किसी ने परमात्मा कहा है। तो परमात्मा की स्वतंत्र स्त्री है स्थिति है, तत्वज्ञान की स्वतंत्र स्थिति है, चिर शांति की स्वतंत्र स्थिति है, जीवन मुक्ति की स्वतंत्र स्थिति है, भक्ति की स्वतंत्र स्थिति है। तो शांति, मुक्ति और भक्ति इसकी स्वतंत्र स्थिति है, तो यही हम सबको प्राप्त होता है। देखो, शांति का अर्थ ये नहीं है कि प्रतिकूलता आने पर हम भयभीत हो जाए, ये शांति का अर्थ नहीं है। जब शांति प्राप्त हो जाती है तो प्रतिकूलता आने पर भयभीत नहीं होते, अपितु उसके सदुपयोग का बोध हो जाता है। ये नियम ही है। ऐसे ही जब अनुकूलता आती है तो उसमें फंस जाए, वो शांति नहीं है, वो सुख है। सदुपयोग की भी हमको बोध हो जाए, कैसे सुख का सदुपयोग कैसे किया जाए, दुख का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये बात साधक के सामने रहती है। और वो सुख दुख के सदुपयोग के द्वारा सुख दुख से अतीत जीवन जो उसका अपना निजी जीवन है, जिसमें शांति है, जिसमें अभाव नहीं है, जिसमें पराधीनता नहीं है, जिसमें निरस्ता नहीं है, अर्थात जो रसरूप जीवन है वो उसको प्राप्त होता है सुख दुख के सदुपयोग से। अगर ये बात आप मान लेते हैं और सदा के लिए मान लेते हैं और दृढ़ता के साथ मान लेते हैं, तो दुख भी आपके लिए साधन सामग्री है, सुख भी आपके लिए साधन सामग्री।
यही अमर जीवन
जी,
यही अमर जीवन
नहीं, उसका फल अमर जीवन है। सुख दुख के सदुपयोग का फल अमर जीवन है। सुख दुख तो उपाय है ना, तो उपाय तो लक्ष्य नहीं होता है, उपाय को तो धारण किया जाता है। यानी सुख दुख का सदुपयोग हमको करना पड़ेगा, उसके परिणाम में जो जीवन मिलता है वो अमर जीवन है और उसी को जीवन कहते हैं। और उसका कभी नाश नहीं होता, वो नित्य प्राप्त है सभी को, लेकिन उसकी विस्मृति हो गई है। हमने अपने को सुख की दास्ता में, दुख के भय में आबद्ध करके दीनहीन मलिन बना लिया है। अगर हम सुख की दास्ता में आबद्ध रहो, अगर हम दुख से भयभीत रहो, तो दुख के द्वारा भी वही जीवन मिलता है, सुख के द्वारा भी वही जीवन मिलता है। जैसे प्रत्येक मानव दो पैरों से चलता है, एक पैर से दुख चलता नहीं, तो सुख दुख दो पैर है अमर जीवन तक पहुंचने की। कब? जब उनका सदुपयोग किया जाए, और उसकी स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि दुख की स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त नहीं है। अरे भाई, हानि हो गई तो दुर्लभ बनो, व्यक्ति चला गया तो दुर्लभ बनो, कामना पूरी नहीं हुई तो निष्काम बनो। तो उसका उपयोग तो है, दुख का भी उपयोग है, सुख का भी सदुपयोग है। सुख है तो भाई किसी काम आओ, ज्ञान का भी उपयोग है, कुछ बच्चा हो ज्ञान हमें प्रेरणा देता है, कुछ बच्चा हो। विश्वास का भी उपयोग है, प्रभु को अपना मानकर अपने में सोई हुई अखंड स्मृति जगाओ, प्रियता जगाओ। तो स्मृति, प्रियता, शांति, स्वाधीनता, ये सब अविनाशी तत्व है। तो उस जीवन में यही सब चीजें है, शांति है, स्वाधीनता है, स्मृति है, प्रियता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि ये जो साधना है यही अमर है, और साधना में चूंकि सत्ता जो होती है क्यों अमर है कि साध्य की होती है, साधना में साध्य की सत्ता होती है। हमसे भूल क्या होती है कि हम अपनी भूल से असत को स्वीकार करके साधना के रहते हुए असाधन उत्पन्न कर लेते हैं, ये हमसे भूल होती है। जैसे जैसे सुख के रहते हुए भी शांति की मांग रहती है, ये नहीं है कि दुख में ही शांति की मांग रहती है, तो शांति की मांग भी रहती है, सुख का प्रलोभन भी रहता है। जब सुख का प्रलोभन रहता है तब उसका सुख का सदुपयोग नहीं करते सेवन, खुद भोगने लगते हैं, तो दुख का भय पैदा उत्पन्न हो जाता है, तो दुख के भय का भी सदुपयोग नहीं करते, त्याग नहीं अपनाते, तो फिर हम सदा के लिए भोग योनि में चले जाते हैं दीर्घ काल के लिए, बहुत दिन के लिए। फिर कहीं प्रभु कृपा करे और मनुष्य योनि दे तो हम सुख की दासता दुख के भय से मुक्त हो। ये जो आपका मानव जीवन है, ये मानव जीवन आपका सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि सुख दुख का भोग अगर जीवन का लक्ष्य होता तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी सुख भोगा जाता है। हम एक बार कश्मीर गए थे, महाराज संबत 90 की बात है, तो जिनके हम ठहरे थे उनके कुत्ते को जितना सुख था वैसा सुख हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों को नहीं था, करोड़ों को। आप ताज्जुब करेंगे, बढ़िया से बढ़िया साबुन से नहलाया जाता था और कमरे में बड़े सुंदर सुंदर मुलायम नमने बिछाए जाते थे उसके रहने के लिए, बड़ी सुंदर कुतिया रखी जाती थी उसके साथ। और महाराज उस सस्ते जमाने में वो कुत्ता 8-8 रोज की बलाई की बर्फ खाता था, और वो जो बगीचे शहर शेयर करने की जगह है वो मोटर बैठ के शेयर करते जाता था। तो अगर मोटर में बहना, बगले में रहना, बच्चों को पैदा करना और रुचि पूर्वक भोजन करना, अगर यही हम इसी को हम जीवन मानते हैं तो इस जीवन के लिए मनुष्य होनी आवश्यक है क्या? क्या रहा है? कोई आवश्यक नहीं। सुख भोग के जीवन के लिए मनुष्य होनी आवश्यक नहीं है। तो इस अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं और हमें जो मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन हमको ये प्रेरणा देता है कि भाई परिस्थिति के अनुसार हमारे विकास के लिए सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आएंगी दोनों चीजें। और ये कोई हमारी जीवन में आती हो ऐसी बात नहीं है, हमने तो नहीं देखा कि कोई आदमी ये कहे कि हमारे जीवन केवल सुख आया दुख नहीं आया, या केवल दुख आया सुख नहीं आया, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। हम मानव हैं, हम साधक हैं, साधक होने के नाते हमें सजगता पूर्वक सुख दुख का उपयोग करना है। सुख दुख के उपयोग से ही सुख दुख से अतीत अविनाशी स्वाधीन रसरूप जीवन मिलता है। अगर ये बात आपको समझ में आती हो, ठीक बैठती हो, तो शरीर के रहते हुए भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, शरीर के रहते हुए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, शरीर के रहते हुए चिर शांति की प्राप्ति होती है। चिर शांति भी अविनाशी तत्व है, जीवन मुक्ति भी अविनाशी तत्व है, भगवत प्रेम भी अविनाशी तत्व है। शांति का जो रस है उससे जीवन मुक्ति का रस बढ़िया है, मुक्ति का जो रस है उससे भक्ति का रस बढ़िया है। क्यों? शांति के रस में दुख का प्रवेश नहीं होता और मुक्ति का रस अखंड रहता है किंतु भक्ति का रस अनंत रहता है। इसलिए इन तीनों में एक ही तत्व है, एक ही सत्ता है। रस के भेद से शांति मुक्ति और भक्ति तीन शब्द बताए गए। अथवा यो समझो कि मुक्ति अपने लिए उपयोगी, भक्ति प्रभु के लिए, शांति जगत के लिए। अब तुम कितने सुंदर हो, अब मनुष्य होने के नाते तुम कितने सुंदर हो कि तुम जगत के लिए भी उपयोगी और अपने लिए भी उपयोगी और प्रभु के लिए भी उपयोगी। इस दृष्टि से इस मानव जीवन का बड़ा महत्व बताया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मानव सत्य का संग नहीं करता तो पशुओं से भी नीचा हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, और अगर सुख दुख का सदुपयोग करता है तो इंद्र से भी नीचा हो जाता है। ये आपके जीवन की महिमा है। इसलिए शरीर रहे तो क्या और जाए तो क्या। उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, जब तक है तब तक है ही उसका सब।